जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता मोहिनी रात में मुझे जगाता प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती नींद पर होते योग के विजय माया के होते सहज पर अजय आराम नहीं मिलन चाहते बाबा संग आत्मा खिल जाते अपने कहा रात को अलविदा परवान हुआ क्षमा पे फिदा समय से पहले बाबा जगाते नयन खुलते ही मिलन कराते प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते माया के बंधन स्वयं कट जाते ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी मौसम की मार अब ना डराती सोना अब आराम नहीं माया है नींद अब अमृत नहीं विष का साया है कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है सुस्ती के धुन में बजी माया की लुरी है तप की राह में मन की हेरा फेरी है जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ सकल विश्व को तप से भरता अमृत वेला में तपस्वी जलता संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता नींद की घड़ी अब बीत चुकी है माया की छाया अब मिट चुकी है वर्तमान में जलती है आत्मा की मशा मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता योग विनी से आलस को राख करता मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे
Tell me, where is fancy bread? Tell me, where is fancy bread? Or in the heart, or in the head? How begot, how nourished? Reply, reply. It is engendered in the eyes, with gazing fed, and fancy dies in the cradle, where it lies. Let us all ring fancy's knell. I will begin it. Ding dong bell. All Ding dong bell. कवि कहता है मुझे बताओ फैंसी अर्थात कल्पना, परंतु यहां उसका अर्थ है प्रेम। वो कहता है मुझे बताओ वेयर इज फैंसी ब्रेड, इस प्रेम का जन्म कहां होता है, और इन द हार्ट और इन द हेड, हृदय में होता है या मस्तिष्क में होता है। हाउ बिगॉट हाउ नरिश्ड, कैसे उत्पन्न होता है और कैसे उसकी पालना होती है। बताओ बताओ रिप्लाई रिप्लाई, ये प्रेम कहाँ जन्म लेता है, कहाँ इसकी पालना होती है, कैसे ये बढ़ता है। हृदय में जन्म लेता है या मस्तिष्क में। इट इज एंजेंडर्ड इन द आईज, वह आंखों में जन्म लेता है, निरंतर निहारने से उसका पोषण होता है, और उसी पालने में वो मर जाता है। ये प्रेम जहां जन्म लेता है उसी पालने में वो मर जाता है। आंखों में जन्म लेता है, एक दूसरे को देखते हैं निहारते हैं, और देखते देखते इस प्रेम की पालना होती है। विद गेजिंग फेड इट इज एंजेंडर्ड इन द आईज, विद गेजिंग फेड एंड फैंसी डाइज, और वो वही मर जाता है। इन द क्रेडल वेयर इट लाइज, आओ हम सब मिलकर इस प्रेम का शोक गीत गाए। कवि कहता है आओ हम सब मिलकर क्या करें, प्रेम गीत, और उसकी शुरुआत मैं करता हूं। आई बिगिन इट डिंग डोंग बेल, वो कहता है डिंग डोंग डिंग, चलो शोक गीत गाते हैं इस प्रेम का। मैं आरंभ करता हूं डिंग डोंग बेल, सब मिलकर बोलो डिंग डोंग बेल, अर्थात ये प्रेम एक क्षणिक आकर्षण मात्र है। शेक्सपियर कह रहा है जिसे तुम प्रेम कह रहे हो, और जिसका जन्म आंखों में होता है, और जो एक दूसरे को निहारने से जिसका पोषण होता है, वो उसी आंखों में मर भी जाता है। अर्थात इस संसार में जिसे प्रेम कहा जा रहा है वो अस्थाई है। वो एक दृष्टि भ्रम है, एक क्षणिक आकर्षण मात्र है। वो कहता है आओ घंटी बजाकर इसका अंतिम संस्कार करें, इसी प्रेम का। हम सब मिलकर करें और शोक गीत गाए, डिंग डोंग डिंग। ये जगत स्थाई है, और यहां पर जो कुछ भी प्राप्तियां है, धन की प्राप्ति, पद की प्राप्ति, सब कैसे अस्थाई। एक अजीब सा आकर्षण है उसमें। दूर के ढोल कैसे होते हैं, हमेशा बहुत बहुत सुना हमने, खींचते हैं, ऐसा लगता है वहां कुछ मिलेगा। हेडोनिक ट्रेडमिल साइकोलॉजी में हेडोनिक ट्रेडमिल नाम का एक सिद्धांत है। व्यक्ति सोचता है मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसे मिल जाए, तो यहां है वो जहां पैसे नहीं है। फिर उसको पैसे चाहिए, पैसे मिलते हैं, पर कुछ समय के बाद उसकी जो अवस्था थी यहां दुख की, वो पैसे के होने के बाद में भी वही रह जाती है। व्यक्ति सोचता है मुझे कोई दोस्त चाहिए, कोई साथी चाहिए, कोई कंपेनियन मिल जाए, मैं कितना दुखी हूं, और वो किसी से प्रेम करता है और बहुत मुश्किल से वो प्रेमी उसे प्राप्त होता है। पहले बेचैनी थी कि प्रेमी नहीं है, फिर प्रेमी मिल गया, पर प्रेमी के साथ रहते रहते कुछ समय के बाद खुशी का स्तर वहीं लौट जाता है पुरानी खुशी के पास। पुराना जो दुख था या खुशी थी या लेवल थी वहीं पर। व्यक्ति सोचता है मुझे कोई पद चाहिए, दूसरों के पास पद है मेरे पास नहीं है, फिर वो पद उसे प्राप्त होता है। पद मिलने के बाद कुछ समय के बाद उस पद में जो आकर्षण था वो खत्म हो जाता है और उसके हैप्पीनेस का लेवल वहीं पहुंच जाता है जहां पहले था। यही विडंबना है। व्यक्ति सोचता है यहां सुख नहीं है वहां सुख है, वो वहां जाता है और कुछ समय वहां रहने के बाद ये पाता है कि वो तो वही अवस्था है जो पहले थी, या फिर व्यक्ति के पास सम्मान नहीं है, उसे प्रसिद्धि चाहिए, प्रसिद्धि यहां नहीं है बिल्कुल भी। फिर प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है जिसकी चाह थी, फिर वो आने के बाद, पर प्रसिद्धि इतनी सस्ती नहीं है, अपने साथ अपने ही किस्म के दुख लेके आती है। और वो कुछ समय के बाद पाता है कि मैं तो वही हूं जहां पहले था। तो ये जो संघर्ष किया बीच में और जो भ्रम उत्पन्न हुआ कि हमने कुछ पाया और सीखा, वो सब क्या था? दुर्लभ है इस संसार में ऐसा व्यक्ति मिलना जो भीतर से यहां है पर यहां नहीं है, पूर्ण वितरागी, पूर्ण मुक्त। पर यही तो साधना है। एक भूत था, उसका कोई दोस्त नहीं था, उसे एक दूसरे भूत साथी की तलाश थी, पर उसे भूत मिलता ही नहीं था जो उसका कंपेनियन, उसका साथी बन जाए। और उसने कहीं सुना था कि जो भी व्यक्ति, पुरानी कहानी है, दंत कथा, शनिवार या मंगलवार को मरता है वो भूत बनता है। जैसे ही कोई छत से गिरता था वो भाग कर जाता था कि कोई मरे, पर देखता था ये वापस जिंदा हो गए तो केवल बेहोश हो गया था। सड़क पर कोई दुर्घटना होती तो फिर भाग के जाता था, शायद कोई मरे और कोई मेरा साथी बने, पर उसकी किस्मत में साथी था ही नहीं। जो भी मरता था उसे लगता था वो मरा, पर वो बेहोश होते थे केवल। तो उस भूत को कभी कोई साथी मिला ही नहीं, सच्चा साथी। श्री रामकृष्ण ये कविता, ये कहानी कहते थे और कहते थे कि इस संसार में भी विरक्त, संपूर्ण मुक्त ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत दुर्लभ है। तो 108 दिनों की ये यात्रा, दिनों की नहीं, आत्मा की गहराई की यात्रा थी। 22 जुलाई को ये भट्टी शुरू हुई थी, आज 6 नवंबर। तो इन 108 दिनों में कितनी मुरलियां रिवाइज हुई? 100 के ऊपर। 100 कविताएं, अव्यक्त मुरलियों का रिवीजन, और ये सारी मुरलियां रिवाइज उसी हॉल में हुई जहां ये चली थी, जहां भगवान ने इन महावाक्यों का उच्चारण किया। यह हम सब का बहुत बड़ा भाग्य है कि ये इसी ओम शांति भवन में मुरलियां चली और हम सब ने उसका रिवीजन यही किया। एक सामूहिक ऊर्जा का वर्तुल जो केवल इस हॉल में ही नहीं परंतु दूर दूर तक फैला, और असंख्य आत्माओं ने इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाई, अमृत वेले की अपनी धारणा को और मजबूत किया। इन 108 दिनों में हमने अव्यक्त मुरलियां रिवाइज की, अमृत वेले की यह किताब पूरी पढ़ी, रिवाइज की, चिंतन किया, हर दिन का होमवर्क किया। ये 100 कविताएं 100 कविताओं का पाठ हुआ। भोजन में परिवर्तन हुआ, डेयरी फ्री हुए असंख्य आत्माएं, और पिछले 7 दिनों से, कल सुखदेव भाई बता रहे थे कोई माता का एक अनुभव कि वो पिछले 1 साल से केवल फलाहार पर है और उसको कैंसर था। उसका कैंसर ऑलमोस्ट ठीक हो गया और उसके बहुत सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल भी है। वो माता ने रिपोर्ट भी भेजे हैं। तो जैसे ही हम अपने भोजन को बदलते हैं, हमारे अंदर एक हल्कापन आ जाता है, एक क्लैरिटी, एक स्थिरता, एक इमोशनल बैलेंस, और हम प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं। शरीर से मादक पदार्थ, उत्तेजना करने वाले सारे पदार्थ जब निकल जाते हैं तो मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। नमक, मसाले, पका हुआ भोजन, अनाज, तीखा, ये सब क्या करता है? वाइब्रेशंस को नीचे लाता है। तो पिछले 7 दिनों का अनुभव जिन्होंने भी किया, या प्राणिक या फलाहार, उन्होंने ये अनुभव किया होगा कि स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो गई। उन्होंने अनुभव किया होगा ऊर्जा का स्तर बढ़ गया। उन्होंने अनुभव किया होगा शरीर डिटॉक्स हुआ। उन्होंने अनुभव किया होगा मन हल्का हो गया, मन में एक अद्भुत सी ऊर्जा उत्पन्न हुई, भावनात्मक स्थिरता आई। क्षमता बढ़ गई कार्य करने की, हाई लेवल ऑफ एनर्जी। मन में जो एक धुंध सी छाई रहती है, एक भारीपन, एक बोझ, जैसे ही हम प्रकृति से जुड़ते हैं और जैसे फलों से जुड़ते हैं, वो सारा बोझ हट जाता है। शरीर शुद्ध होने लगता है भीतर से, मन हल्का, शरीर शुद्ध, ऊर्जा जो बह रही थी उसमें जो बाधा थी वो हट जाती है। ये केवल वेट लॉस वेट गेन की यात्रा नहीं है, डिटॉक्स की यात्रा नहीं है, या फिर किसी एक रोग से मुक्ति की यात्रा नहीं है। ये यात्रा हायर कॉन्शियसनेस की है। तो इन 108 दिनों में अलग अलग चैलेंजेस हम सब ने लिए थे। 84 डेज का वीगन चैलेंज था, 100 डेज कविता थी, और पिछले 7 दिनों का CRPF का पुरुषार्थ। तो भिन्न भिन्न पुरुषार्थ, बहुत सारे होमवर्क किए, हर दिन एक नया होमवर्क। तो आज इस भट्टी का अंतिम दिन, अंतिम आहुति इस दिव्य सफर की। पर वास्तव में यह आहुति अंतिम दिन नहीं, यह तो क्या है, शुरुआत। यह आरंभ भी नहीं, प्रारंभ भी है। हिंदी में 2 शब्द है, एक है आरंभ, एक है प्रारंभ। हर आरंभ प्रारंभ नहीं है, पर हर प्रारंभ आरंभ जरूर है। आरंभ अर्थात शुरुआत, प्रारंभ अर्थात योजनाबद्ध शुरुआत, प्रारंभ अर्थात लक्ष्य के साथ शुरुआत, प्रारंभ अर्थात तैयारी के साथ शुरुआत। इसलिए आरंभ प्रारंभ नहीं है, पर हर प्रारंभ आरंभ जरूर है। प्रारंभ आरंभ सामान्य शुरुआत है, प्रारंभ शक्तिशाली शुरुआत को प्रारंभ कहते हैं, प्रचंड शुरुआत। तो ये एक आरंभ है। कोई दिन रात लग जाए आज के अंतिम महावाक्यों ने, बाबा ने कहा, वो भी निकल पड़ेगा या उसकी भी निकल पड़ेगी हमारी भाषा में। बाबा ने कहा वो भी निकल पड़ेगा अगर कोई इस पुरुषार्थ में दिन रात लग जाए। सारा पुरुषार्थ इन 3 B's के इर्द गिर्द घूमता है। इन पर यदि पकड़ आ जाए तो आगे का पुरुषार्थ आसान हो जाएगा। पहला ब्रह्म मुहूर्त 2 से 5, एक दिन भी नागा नहीं, एक दिन भी मिस नहीं, और वो सहज स्वाभाविक पुरुषार्थ। दूसरा ब्रह्मचर्य, संपूर्ण ब्रह्मचर्य, संपूर्ण पवित्रता, कोई लगाव नहीं, कोई झुकाव नहीं, कोई आकर्षण नहीं, किसी से प्रभावित नहीं, डिटैच्ड। और तीसरा भोजन, और भोजन में संपूर्ण फलाहार। धीरे 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 ये सारे विकृत वस्तुएं जो हम डाल रहे हैं उनसे इस शरीर को मुक्त करना, क्योंकि सच्चे और अच्छे पुरुषार्थ के लिए शरीर स्वस्थ चाहिए। अगर बार बार बीमार ही पड़ते रहेंगे तो पुरुषार्थ कब करेंगे? इसलिए खोज करनी है सात्विक आहार की, और एक एक चीज को निकालते जाना है। इसकी आवश्यकता नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं, और धीरे धीरे हम पाएंगे कि हम जो कुछ ले रहे हैं वो केवल और केवल हमारे शरीर और मन को विषाक्त ही कर रहे हैं। धीरे धीरे हल्का और हल्का और हल्का करते जाएंगे, विद बैलेंस, विद अंडरस्टैंडिंग, समझ का विस्फोट हो जाए, यही ज्ञान है। द एक्सप्लोजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज द रियल नॉलेज। समझो और करो, समझो और करो। किसी की सुनने की आवश्यकता नहीं, कोई कह रहा है इसीलिए मत करो, खुद स्टडी करो, खुद देखो, एक दिन करके देखो क्या होता है। नो कुक्ड 2 दिन करके देखो, नो कुक्ड 3 दिन करके देखो, नो कुक्ड, और 3 दिन के बाद अपनी अवस्था को चेक करो। जो वासनाएं हलचल करती थी वो सब विलीन हो गई, मन स्थिर हो गया। जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता था अब पुरुषार्थ नहीं करना पड़ रहा है, सहज। 10-10 बार मुरलियां पढ़ो फिर भी कुछ याद नहीं रहता है, अब पढ़ो। तो ये 3 पुरुषार्थ मुख्य है, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मचर्य और भोजन। ये छोड़ दिया और इसके अतिरिक्त बाकी सब कुछ किया, डिस्कशन किया, भाषण दिए, प्रोग्राम्स किए, चर्चाएं की, संगोष्ठी की, सेमिनार किए, वर्कशॉप किए, ये सब ज्ञान का भ्रम मात्र है, क्योंकि ये यात्रा अकेले की है और आंतरिक यात्रा है, अंतरंग यात्रा है, खुद से जुड़ने की यात्रा है। यहां पर बाहर का कुछ भी, बाहर की कोई वस्तु का कोई काम ही नहीं है। तो 108 दिन कहा जाता है, पहले 1 दिन करो, फिर 3 दिन, फिर 7 दिन, फिर 21 दिन, फिर 28 दिन, फिर 90 दिन, तो क्या बन जाता है? एक लाइफस्टाइल बन जाती है, रिपीट करते जाओ। जिन्होंने नहीं की वो आज से चालू करो, और उन सब का ही धन्यवाद जिन्होंने इस भट्टी में केवल मुस्कान से सहयोग दिया, जिन्होंने इस भट्टी में केवल मौन से सहयोग दिया, जिन्होंने इस भट्टी में अनुपस्थित रहकर सहयोग दिया, जिन्होंने इस भट्टी में होमवर्क ना करके सहयोग दिया, जिन्होंने इस भट्टी में विरोध करके सहयोग दिया उनका तो खास, जिन्होंने हमें अलर्ट रखा उनका भी। तो रिपीट 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 रिपीट, दोहराओ दोहराओ दोहराओ, यही मंत्र है। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। ये एक दिन दो दिन 108 दिनों की यात्रा थी ही नहीं, इन यात्रा का इस भट्टी का दिनों से कोई लेना देना ही नहीं था। ये तो आत्मा में जो माया की परतें हैं उन परतों को खोलने की यात्रा थी, अवचेतन की गुफा में प्रवेश करने की यात्रा थी, ड्रिल करने की यात्रा थी। एक एम्प्लॉई सुबह सुबह अपने मैनेजर के कमरे में चला जाता है कुछ सोचकर कि आज तो ये करके रहूंगा, और जैसे ही मैनेजर देखता है मेरा ये एम्प्लॉई आया है, तुरंत वो सोचता है इसे मैं कुछ तो सिखाता हूं, और उसे कहता है कि अगर तुम्हें अपना प्रोडक्ट बेचना है तो तुम एक चीज सीख लो, रिपीटिशन, दोहराओ दोहराओ दोहराओ। अपने प्रोडक्ट की चर्चा करते रहो, किसी भी पार्टी में जाओ उस प्रोडक्ट का बार बार नाम लो ताकि लोग सुने और उनके मन में छप जाए वो कि ये प्रोडक्ट है और इस कंपनी का प्रोडक्ट है, ताकि हमारी कंपनी और आगे बढ़े। और यही मैं तुमसे कहता हूं मेरा फलसफा है, यही मेरे जीवन का अनुभव है। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें भी यही ट्रिक यूज करनी चाहिए। लोगों के मन में बिंबित करना है, लोग बार बार सुनते रहे उस प्रोडक्ट के बारे में, यही फिलॉसफी है, यही सीक्रेट है। सक्सेसफुल बिजनेसमैन अगर तुमको बनना है तो ये करो, रिपीट रिपीट रिपीट, रेपिटिशन रेपिटिशन रेपिटिशन, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और मैनेजर इतना कहने के बाद अपने उस एम्प्लॉय से कहते, अच्छा तुम मेरे पास आए थे किस लिए आए थे? वो कहता है इंक्रीमेंट 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 इंक्रीमेंट। कुछ कहता नहीं, बस इतना ही कहता है क्या करो, रेज 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 रेज। तो कोई भी चीज यदि मन में अंदर बिठानी है तो क्या करना पड़ेगा? रिपीट 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 रिपीट, अभ्यास 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 अभ्यास। इसलिए यात्रा यहां रुकती नहीं है, यात्रा तो जारी ही रहे। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड। तो आज के बाबा के अंतिम महावाक्यों में बाबा शिक्षा देते हैं, बच्चे आगे चलकर तुम्हारा नाम वाला होगा, फिर बहुत आएंगे। कट निकलने में टाइम लगता है, कट निकलने में इतना जल्दी नहीं निकलेगा। भाषण दे दिया, भाषण सुन लिया, डिस्कशन कर लिया, 2 बजे उठ गए, फल खा लिए, ब्रह्मचर्य पालन कर लिया, ऐसे छोटे मोटे पुरुषार्थ से कट थोड़ी निकलेगी। यहां तो शुरुआत हुई है अभी। एक एक एडिक्शन से एक एक दिन आत्मा को मुक्त करते जाना है। कट निकलने में टाइम लगता है, रात दिन कोई लग जाए तो शायद, परहैप्स, नॉट श्योर, शायद पर चांस हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है, संभावना है थोड़ी, मतलब कोशिश करके देख लो, अगर हो गया तो ठीक। शायद, ये शायद शब्द भी बड़ा अच्छा शब्द है, शायद परहैप्स मे बी हो सकता है, पर चांस संभावना है, करके देख लो, गारंटी नहीं है, वो हो सकता है। रात दिन कोई लग जाए तो शायद निकल पड़े, आत्मा प्योर हो जाएगी, आत्मा इम्प्योर है, उसकी इम्प्यूरिटी इतनी गहरी है, कैसे जाने और कैसे पहुंचे अंदर तक। तो फिर यह शरीर भी छोड़ेंगे। परंतु बहुत बच्चे जो सुबह को उठते नहीं है, जो धारणा भी नहीं करते, दिन भर ज्ञान की टिक 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 चिक चिक क्या टिक 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 करते हैं, पर सुबह अमृत वेला उठते नहीं है, टिकलू टिकलू नहीं है, टिक टिक करते रहते हैं, डिस्कशन बहुत करते हैं, पर धारणा जीवन में नहीं है, भोजन के गुलाम है। सवेरे जागने की आदत पड़ जाए, फिर देखो कैसे डैश बन जाते हैं, सर्विसेबल बन जाते हैं। आगे के तीन जो पैरा है वो सब क्या है, बाप से रूहान कर से कैसे करे, चार पैरा। बाबा राय देते हैं अमृत वेले भी कैसे बाबा से बात करनी है, कैसे बात करनी है बाबा से, कैसे बाबा से बात करेंगे, कैसे प्यार से बात करेंगे। बाबा आप बेहद के बाप टीचर सदगुरु हो, वो कहेगा मुझे पता है। आप बेहद के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता सकते हो, वो मैंने पहले कर दिया, कुछ नया बताओ। बाबा कैसा वंडरफुल यह ड्रामा है, मैंने ही रचा है। बाबा आप कैसे आकर पतित से पावन बनाते हो, सारी दुनिया को कैसे पलटाते हो, बहुत बड़ा वंडर है, ये मेरा रूटीन वर्क है, इसमें नया क्या है। बाबा 5000 वर्ष के बाद फिर मिले हो, वो भी मैंने ही तुमको बताया। बीत की लाइनें आप पढ़ो, हम वो पढ़ रहे हैं जो बाबा से रू रिहान करनी है। आप आकर हमें दुखों से छुड़ाते हो, वो कहेगा मेरी ड्यूटी है, मैंने कोई उपकार विपकार नहीं किया। पेशेंट आके कहते हैं डॉक्टर साहब आपका बहुत धन्यवाद, अरे धन्यवाद क्या, हमारा काम ही है। दुकान में कोई चीज चाहिए तो दुकानदार को पैसे देते हो, पैसे देते हो, वस्तु दे देता है, जाओ यहां नहीं मिलती तो दूसरी जगह से लेता है। हाँ वो अलग बात है। दो जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही आप देते हो, बाप आप कितने मीठे हो। एक ही यहां हर जगह ना दो जन्म तो नहीं हो सकते, दो युग हो सकते हैं। आप हमको क्या बनाते हो, राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक बनाते हो। हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे, हम आसुरी मत पर नहीं चलेंगे, हम तो आप पर बलिहार जाएंगे। मीठे बाबा हम आपकी मदद के लिए तैयार है, हम पवित्र बन भारत को पवित्र जरूर बनाएंगे। तो बाबा को कौन सी मदद चाहिए, धन की कौन सी मदद चाहिए, प्यूरिटी की मदद चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा को बहुत ज्यादा बुद्धिमान बच्चे नहीं चाहिए, बाबा को कौन से बच्चे चाहिए, पवित्र बच्चे चाहिए। आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप कर्म नहीं करेंगे। आपकी कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था कि हम विश्व का मालिक बनेंगे। आप हमें क्या से क्या बना रहे हो, बाबा आप कितने मोस्ट बिलवड हो, कैसा विचित्र ड्रामा बनाए। आपसे हम प्रतिज्ञा करते हैं, आपसे वर्षा जरूर लेंगे, आप कितने मीठे हो, आपकी याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे, आपसे हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। अब हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनाना, तभी सतयुगी राज्य पाएंगे, आपको हम निरंतर याद करेंगे। बाबा हम भोजन पकाएंगे, घूमेंगे जाएंगे तो भी आपकी याद में, हमको सतो प्रधान जरूर बनना है। पता नहीं कल शरीर छूट जाए, कल या आज, तो हम सतो प्रधान बनेंगे कि नहीं। मौत का डर है ना, मौत, बाबा हम जीते जी आपसे वर्षा जरूर लेंगे, तो क्या करना है, बाबा से बातें करनी है। तो अमृत वेले की ये बुक आज पूरी हुई। इस किताब को, पहले तो इस किताब का धन्यवाद, इस किताब को बनाने वालों का धन्यवाद, सबको धन्यवाद। मुरली पढ़ने, इस किताब को पढ़ने वालों को धन्यवाद। इस किताब में जो चिंतन किया, मनन किया, उसके लिए स्वयं को धन्यवाद। हर एक करेंगे तो कोई भी महान कार्य जब होता है तो उसके पीछे कभी एक व्यक्ति कभी नहीं होता, उसके पीछे एक संगठित ऊर्जा होती है। कोई एक व्यक्ति क्रेडिट नहीं लेके जा सकता, वास्तव में सारे संगम के कार्य परमात्मा शक्तियों द्वारा संपन्न हो रहे हैं। इसलिए किसी का, एक व्यक्ति का तो कोई इसमें काम है ही नहीं, ये संगठित ऊर्जा है। आज की कविता, अंतिम कविता, तो हमने कविताओं का ये दौर कहाँ से चालू किया था, कहाँ से, वासना मुक्त वसन से, और वासना मुक्त वसन से हम पहुंच गए वैराग रागिनी तक। वासना मुक्त वसंत मोह त्याग संगीत, स्पर्शहीन सुख शब्दहीन साधना, निर्विकार नृत्य मोह भंग मंथन, मैं मुक्त मौन कहो मौजी राम सुनो मौजी लाल, परम पथ अंतर तप वैराग्य रस छूटे हर छोर, भाव यज्ञ दिव्य संकल्प मौन मिलन दिव्य चेतना, मेरा बाबा योग सरोवर मौन वर्षा वैराग्य रंग, योग यात्रा प्रभु प्रेम रस नेहदीप, शांति कुंज जीवन साधना तप शिखा सत्य प्रकाश, अग्निपथ वाणी में विष शिवरस आनंद रस, स्मृति में खरोच योग अग्नि, समय का अपमान भावनाओं की अशुद्धि, सेवाओं में दिखावा मन की मलिनता, ईश्वरीय प्रेम का उपहार अंतर्नाद मौन संवाद, कर्म बंधन वैराग्य पुष्प, आचरण में असावधानी, समय का सम्मान करो संस्कारों की सलवटे, मंच की मोहकता सेवा में स्वार्थ, नेत्रों की नकारात्मकता निर्लेप निरवता, रूपहीन रमन, एक बाबा एक मुरली एक मधुबन, अनासक्त क्या पद्म, बोलती निगाहें देह संघ भस्मासुर, असंख्य आरती आनंद गंगा तप कमल, संगम की सादगी हमी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्तु, बादलों की नहीं वरदानों की रूहानी खेती। आशीष भाई इस पे डांस भी करेंगे कभी। पेपर टाइगर का खौफ जीवन डोर तुम ही संग बांधी, पुरुषार्थ का मौसम भगवान मेरा साथी, उलझनों के शिकंजे में ब्राह्मण जीवन, पांच दुर्दांत ठग, जान हाजिर है किसकी, मैं के रूप हजार हिमालय से ऊंची स्थिति, शकुनी की शाजी ची माया मौसी की अलबेली चाल, इच्छाओं का भवर जाल, पांच मिनट और बस पांच मिनट और, जी ले ये पल संगम के समुद्री लुटेरे, गीत गाता चल आज की ताजा खबर, तीन नंबर की बकरी धर्मराज का वारंट, सोल के बोल के रोल के गोल, ये सबसे अच्छा था टॉपिक, नहले पर दहला, संगत की रंगत खुशी का नहीं ठिकाना, अलबेली आत्माओं के बदलते तेवर, रोया ना करो खुशी इतनी की बात मत पूछो, यही बाहर है दुनिया को भूल, ब्राह्मणों के गुनाह धर्मराज के कानून, जाने कहां गए वो दिन, रंग बिरंगी माया के दाग, मरना तेरी गली में मरना तेरे गले में, अंधे की औलाद अंधे, रूठा ना करो जले ना क्यों परवाना, माला के बिखरे मोती, आप आए बाहर आई बहारो फूल बरसाओ। और आज की अंतिम कविता वैराग्य रागिनी, इटती दुनिया को बुला दे, ये दुनिया कैसी है, मिटने वाली दुनिया, अंतर का दीप जला दे, माया की माटी की माया छोड़ के शिव से नाता जोड़ ले। ये देह क्या है? माया, माटी, और सबसे बड़ी माया तो इसी मिट्टी की है। संसार का ये खेल है भंवर, यहां जितना तैरोगे और फंसते जाएंगे। तृष्णा का हर घूट है जहर, हर इच्छा क्या है? जहर की तरह। एक इच्छा पूरी नहीं होती तो दूसरी इच्छा जन्म लेती है। इच्छा है सागर की लहरों की तरह है। आती ही जाती है, आती ही जाती है, आती ही जाती है, कभी रुकती ही नहीं। साइकिल थे तो बहुत खुश थे, परंतु देखा पड़ोसी के पास स्कूटर है, तो हमको भी स्कूटर चाहिए, तो हमने स्कूटर ली, पर तब तक पड़ोसी ने कार ले ली, तब तक स्कूटर तो व्यर्थ हो गई, फिर तो कार चाहिए। जब हमने कार ली तो उसने एसी की कार ले ली, एसी वाली कार, बड़ी वाली कार ले ली, और जब उसकी कार देखी तो हमें अपनी कार तो बैलगाड़ी जैसी दिखती है। जब हमने बड़ी वाली कार ली तो पता चला उसने तो हेलीकॉप्टर ले लिया। दुख तो कभी कम हुआ ही नहीं, हिडोनिक ट्रेडमिल। दुख अवस्था वो की वो है, चीजें आई चीजें गई। तृष्णा का हर घूट है जहर, समझ इसे एक भ्रम का मेला, हर राही है यहां अकेला। ये मेला कैसा है? एक भ्रम का मेला है। शेली अपनी कविता में कहता है, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट। हम आगे देखते हैं, पीछे देखते हैं, भविष्य में देखते हैं, अतीत में झांकते हैं, और किसकी चाह करते हैं? उन चीजों की जो है ही नहीं। Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. We look before and after and pine for what is not. हमारी हर सुख में कहीं ना कहीं दुख छिपा हुआ है, हर मुस्कान में एक दर्द छिपा हुआ है, उसको हम छिपा छिपा कर घूम रहे हैं। ऊपर से मुस्कान है पर भीतर से हर व्यक्ति दर्द में है। बाहर से संगति है, अंदर से अकेलापन है। ऐसा लगता है सबके बीच में है, ये सब कितने खुश है, सबके चेहरे पर कितनी खुशी है, पर उस खुशी के पीछे दर्द है। संसार का ये खेल है भंवर, तृष्णा का हर घूट है जहर, समझ इसे एक भ्रम का मेला, हर राही है यहां अकेला। अब हर बंधन तोड़ दे, शिव से नाता जोड़ ले। ये बंधन तोड़ना अर्थात भ्रम को तोड़ना है, ये बंधन तोड़ना अर्थात देखना है, ये बंधन तोड़ना अर्थात साक्षी हो जाना है। देख शरणभंगुर सब नाते, केवल दुखों की ओर ही ले जाते। हर रिश्ता कहां ले जाता है? अंततः दुख में ही ले जाता है। जिससे थी आज सुख की कभी, वही हर बार आंसू दे जाते। सबसे ज्यादा आंसू किसने दिए? जिससे सबसे ज्यादा अपेक्षाएं थी, इन अपेक्षाओं का टूट जाना ही मुक्ति है। किससे क्या अपेक्षा रखे? हर व्यक्ति अपने सपनों में खोया हुआ है, लग रहा है हमारे साथ है, पर हमारे साथ तो वो था ही नहीं, वो तो अपने ही स्वप्न में है, वो तो अपने ही स्वप्न पूर्ति में लगा हुआ है। हम केवल एक माध्यम थे बस। जिससे थी आज सुख की कभी, हर बार वह आंसू दे जाते। अब हर बंधन तोड़ दे, शिव से नाता जोड़ ले। अपनों ने ही खेले ऐसे दाव, कैसे दाव खेले? दिल पे छोड़ गए गहरे घाव। सबसे ज्यादा घाव किसने दिए? जिस जिसको अपना कहा। वो जो दूसरे हैं, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। वो बेचारे ऑफिस वाले जो रास्ते पे मिलते हैं, लो हाय होम शांति कहते हैं, वो बड़े निर्दोष है। वो जिन्होंने निंदा की, ग्लानी की, अपमान किया, उन्होंने इतने घाव दिए ही नहीं कभी। गहरे घाव कहां से मिले? अपनों से मिले। अब छूट गया हर मिथ्या भाव, मन से मिटे हर सारे लगाव। ये सारे मिथ्या भाव, इन मिथ्या भावों से छूटना ये वैराग है, वास्तविक वैराग। वैराग कहीं दूर जाना नहीं है, यहीं बैठे बैठे अनासक्त हो जाना, यहीं बैठे बैठे चीजों को देख लेना आर पार, और ये होगा आहार परिवर्तन से, क्योंकि सबसे गहरी आसक्ति जिससे है वो छूटते ही बाकी सब लिंबू टिंबू आसक्तियां छूट जाएगी, छोटी मोटी आसक्तियां, क्योंकि जो बड़ी विजय प्राप्त कर लेता है फिर उसको छोटी छोटी विजय प्राप्त करने में ज्यादा समय नहीं लगता, वो देख लेता है हाँ ये भी एक आसक्ति है, ये भी एक आसक्ति है, और आसक्ति में छिपा हुआ नुकसान दिखता है। अपनों ने ही खेले ऐसे दाव, दिल पे छोड़ गए गहरे घाव। अब छूट गया हर मिथ्या भाव, मन से मिटे सारे लगाव, अब हर बंधन तोड़ दे शिव से नाता जोड़ ले, एक शिव ही है जो मेरा अपना था, अपना है और सदा रहेगा। और शिव अर्थात वो नहीं जो दूर कहीं परम धाम में बैठा है, वो तो भीतर ही था निरंतर। कांच के स्वप्नों का यह महल, कांच के सपनों के ये महल है सारे। माया पल पल करे बेहाल, ना इसमें प्यार या कोई सार, हर रिश्ता निकला बस व्यापार। व्यापार और प्यार में क्या अंतर है? व्यापार लेता है प्यार देता है, पर धीरे धीरे पता चला यहां के जो रिश्ते हैं वो सब कैसे हैं, बिजनेस है। और जिसे हमने प्रेम कहा था वो तो बस केमिकल रिएक्शन निकली, बस एक संडे भी देखा था कितने बड़े बड़े शब्द प्रयोग किए थे, प्यार मोहब्बत इश्क, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे ले आऊंगा, हजारों लाखों करोड़ों फिल्में बन गई इस पर, इस केमिकल रिएक्शन पर। केवल संडे भी बताया था ये खेल केवल केमिकल रिएक्शंस का है। सबसे पहले डोपामिन रिलीज होता है, फिर ऑक्सीटोसिन सीरोटोनिन रिलीज होता है, इससे अनुभव होता है कि ये व्यक्ति मेरा है, गहरा संबंध, प्रेम, काम विकार, बहुत सुख मिलता है। खाने में गुलाब जामुन खाया, रसगुल्ला खाया, ये रसगुल्ले में सुख है ही नहीं। अगर होता तो जो पीलिया का पेशेंट है जिसका बिलीरुबिन बहुत ज्यादा है, उसको तो किसी में इंटरेस्ट नहीं है, जबकि उसका सब कुछ फेवरेट है। वो फेवरेट चीज भी उसके सामने अगर रखी जाए वो भी उसको खाने की इच्छा नहीं होती है, अर्थात सुख उसमें है ही नहीं। तो ये खेल तो अंदर ही चल रहा है, केमिकल रिएक्शन सारी। और कैसी बड़ी बड़ी फिल्में बन गई और किताबें लिखी गई और नॉवेल्स और रोमांस और क्या क्या हो गया, यहां तो बस एक पहले डोपामिन निकलता है, फिर थोड़ी देर में सीरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन निकलता है, और जिससे लगता है ये व्यक्ति मेरा है, कनेक्शन, डीप लव, आ हा हा गुलाब जामुन, आ हा हा तंदूरी रोटी, आ हा हा जलेबी, आ हा हा अभी अभी शादी हुई और साथ में घूम रहे, आ हा हा क्या सुख प्राप्त हो रहा है। तीन व्यक्ति मिलते हैं, वो कहते हैं अपने अपने सुखों का बताओ। पहला कहता है मेरी अभी अभी शादी हुई, अपनी पत्नी के साथ जब घूमता हूं तो मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। दूसरा कहता है अरे मूर्ख ये कोई सुख है, ये मिडल एजेड है। वो कहता है आज जो मैंने भोजन खाया उसके सामने तो ये जो तुम्हारा सुख है ना बहुत ही तुच्छ सुख है, ये भी कोई सुख है, ये है भोजन का सुख। तीसरा बुजुर्ग होता है, कहता है अरे मूर्खो बंद करो बकवास, आज जो तीन दिन के बाद जो पेट साफ हुआ इससे बड़ा सुख तो संसार में कोई हो ही नहीं सकता। बुजुर्ग लोगों का सारा ध्यान कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन, इसी चक्र में रहता है और तीसरा ये निकलने के बाद तीसरा निकलता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन से क्या होता है? खालीपन और पश्चाताप का अनुभव होता है थोड़ी देर के बाद, एम्प्टीनेस और थकान हो जाती है, व्यक्ति सो जाता है खाने के बाद, विकारों के बाद। क्यों? क्योंकि शरीर थक जाता है, और जब उठता है तो पश्चाताप, और जब उठता है तो एक खालीपन, बहुत अच्छा भोजन खाया यहां तक आकंठ। उसके बाद में जो नींद आती है वो रिफ्रेशिंग नींद नहीं होती, वो कोमा होता है। उससे उठते हैं तो पता ही नहीं चलता है दिन है रात है सुबह है। कई बार ऐसा होता है ना उठने के बाद कि सुबह वाली नींद के बाद उठ रहे हैं कि दोपहर की, रात की, पता ही नहीं चलता है। ये खेल, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है बस। दवाइयों में क्या होता है, डिप्रेशन की गोलियों में वही होता है, जब माइंड के सारे केमिकल लेवल कम हो जाते हैं तो केमिकल कम होता है तो उदासी होती है, उदासी कम होती है केमिकल कम हो जाते हैं तो ये चक्र चालू हो जाता है। इसलिए व्यक्ति अपने विल पावर से निकल नहीं पाता डिप्रेशन से, इसलिए उसको बाहर से गोलियां दी जाती है। उन गोलियों में वही सब होता है ताकि लेवल थोड़ा बढ़ जाए और उसको हेल्प हो जाए, वो इससे बाहर निकले। नॉर्मल व्यक्ति अपने विल पावर से इसको आगे बढ़ा सकता है। ये तो एक मेथड है ये सब रिलीज करने की, एक्सरसाइज से निकलता है, मेडिटेशन से निकलता है, ज्ञान चिंतन से, यही सारे लेवल्स निकलते और बढ़ते हैं। कोई कला में आगे है वो वहां से निकलता है उसके लिए, कोई अपने कला में इतना निपुण है या इतना खो गया है तो उसे कहीं ये सब चीजों की जरूरत नहीं। तो अपने को समझना है ये सब क्या है, ये सारा जो इतना आडंबर है, सारा घोड़े पर बैठो, बैंड बाजा बजाओ, शादी ये वो सब, ये केमिकल रिएक्शन के लिए बस। ये जो जाओ किचन में ये बनाओ वो बनाओ, इधर बनाओ उधर बनाओ, इतना सारा बनाओ, वो बस वो उसके लिए। वो योगी जो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है उसे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। गीता में संतुष्ट है सततम योगी, वो योगी जो समाधि लंबा समय ध्यान में रहते हैं उन्हें कौन सा सुख मिलता है, भीतर ही सब कुछ मिल रहा है उनको, झरने फूट रहे हैं आनंद के, डोपामिन का पूरा फ्लड आ रहा है उनके अंदर। कुंडलिनी जागरण ये सारे जो नाम उन्होंने दिए हुए ये सब क्या है, सागर पूरा उमड़ रहा है केमिकल्स का, वो कहाँ नीचे उतरे क्योंकि हाँ। और दूसरा एक प्रॉब्लम, ये सब केमिकल रिएक्शन में एडिक्टिव है क्योंकि लेवल कम होते के बाद फिर से भूख लगती है, फिर से काम विकार की याद आएगी क्योंकि टेस्ट ले लिया है। वो जो है वो परमानेंट लेवल है। कांच के सपनों का यह जाल, माया पल पल करे बेहाल, ना इसमें प्यार ना कोई सार, हर रिश्ता निकला बस बिजनेस व्यापार। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंडशिप डे, फ्रेंडशिप बैंड, वैलेंटाइन डे, मैरिज डे, एनिवर्सरी डे, आई लव यू, यू लव मी, बर्थडे, रोज डे, ये डे वो डे, टाइम वेस्ट, मैसेजेस, शॉपिंग, गिफ्ट्स, आपके लिए खास गिफ्ट, स्पेशल ब्रदर, स्पेशल टोली, स्पेशल राखी, केमिकल रिएक्शन। डेथ डे मनाओ, डेथ शुड बी द सेलिब्रेशन, डेथ सेलिब्रेशन बन जाए जीवन का। नहीं कविता छोटी है, एक्सप्लेनेशन लंबा था। कविता तो छोटी ही है, भोगे रोग भयम, हर भोग में किसका भय है, रोग का। कल ही एक पेशेंट आई 50 एज, हैंग कर लिया खुद को, रिश्तेदार पहले तो छिपा रहे थे, पूछ रहे क्या हुआ क्या हुआ, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर देखा पूरा निशान है यहाँ पर, बेहोश आई सीधा वेंटिलेटर पर। क्यों? क्योंकि घर में इतनी सारी डेथ्स हुई है, उनके दुख बहुत है गहरा, ऊपर से दिखाया नहीं, परंतु व्यक्ति ऐसा जो करता है अचानक नहीं करता है, मन में तैयारी तो चलती ही है। दुख इतना बढ़ गया है, दुख इतना बढ़ गया है कि जब जीवन जीने के कोई रास्ते दिखाई नहीं देते तब व्यक्ति ये कदम उठाता है। इसलिए इसको रिकॉग्नाइज, पकड़ना बड़ा जरूरी है। अगर हमारे आसपास जो लोग हैं उनमें भी ये उदासी रहती है और रिश्तेदार पकड़ नहीं पाते, वो कहते सब ठीक ही था, ठीक था ही नहीं कभी। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वृत्ते निपालत भयम शास्त्रे वादि भयम कुले खल भयम गुने खल भयम काये नृपांतत भयम माने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराये भयम सर्व वस्तु भयान्वितः। इस संसार में सब कुछ में भय ही से समाया हुआ है। कोई गुणवान है तो निंदा करने वालों का भय है ही, किसकी काया सुंदर है तो बुढ़ापे का भय है, किसके पास पैसे बहुत है तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स का भय है, किसके पास शास्त्र बहुत पढ़ लिए तो कहीं पर भी वाद विवाद चालू हो जाता है, क्योंकि उसके विरोध वाले विचार मिले लोग तो वो डायरेक्ट डिस्कशन आर्गुमेंट करना चालू कर देता है। सब वस्तुओं में भय है एक छोड़कर वैराग्य। तो आज की अंतिम कविता थी वैराग्य रागिनी, लास्ट आभार प्रदर्शन। अभी किस किस को आभार प्रदर्शन करें, बहुत सारे भाई बहने। सबसे पहले तो नहीं कह सकते, ये रहस्य अंतर बनाने वाले निखिलेश भाई, अरविंद भाई जो निरंतर यहाँ ऑडियो में थे, सुखदेव भाई, अखिल भाई, दीपा बहन, गायत्री बहन, हीना बहन, सुशील भाई, संदीप भाई, रम्या बहन, रविनेश भाई, अखिल भाई, ये सारा पोस्टिंग करने का काम रविनेश भाई का डेली का, संदीप भाई ओवरऑल कोऑर्डिनेशन एमएट, पुरुषोत्तम भाई प्रश्न बनाए, समीक्षा बहन, यशोदा बहन, क्रांति बहन, वर्षा बहन, कुमारी माता, मनी भाई सारे, डॉक्टर दिव्या बहन, विक्रांत भाई, सिद्धू भाई, ये रोज जो हमको भेजा सिद्धू भाई ने सारा भेजा, प्रियंका बहन, श्रद्धा बहन, पोस्टर्स, ड्राइव मैनेजमेंट, उज्जवल भाई, मुक्ति बहन, ऋचा बहन, मनीषा बहन, कविता बहन, अंशिका बहन, अंश भाई, श्रीकांत भाई, मंजू माता जी, अश्विनी बहन, फिर ये दूसरे ग्रुप तमिल के शालिनी बहन, चित्रा बहन, महाराष्ट्र के चित्रा बहन, वियतनाम के फ्योंग बहन, संपा बहन बंगाली, कन्नड़ा के यशविनी बहन, नेपाल के ईश्वरी बहन, नेपाल के विनोद भाई, डॉक्टर स्वाति, बहुत सारे भाई, और ये तो रीडर्स क्लब में तो लंबी लिस्ट है, बहुत बहुत बड़ी लिस्ट है। किस किस को धन्यवाद करें, सबका धन्यवाद। शिव बाबा का सबसे बड़ा धन्यवाद जो 108 दिन तक निर्विघ्न भट्टी चली। हमें हमेशा भट्टी में ये रहता है कि कोई बीच में इमरजेंसी आ जाए तो छोड़ के जाना पड़े, पर जितनी भी भट्टी अब तक हुई वो सभी निर्विघ्न हुई। पर इस भट्टी में एक ऐसा अनुभव हुआ, बीच में एक थकान का अनुभव हुआ था, ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी कुछ नहीं करना है। जब 70-80s बीच में चल रहा था ना, तो लगा था इसके बाद ये 108 वाला कभी नहीं करेंगे, अभी ये अंतिम है, छोटा छोटा ठीक है, क्योंकि फिर बोलने से भयंकर वैराग आ जाता है, फिर बहुत ज़्यादा, फिर कुछ भी नहीं करने की इच्छा होती, माइंड ब्लॉक हो जाता है कई बार ज्ञान का ज़्यादा ये करने से, इसलिए थोड़ा पिकनिक भी जरूरी है। तो ये अंतिम 108 दिन वाली भट्टी है। आज पिकनिक करनी है या कल करनी है या संडे करनी है? संडे करनी है कि आज करनी है? आज करनी है तो आज बताओ, आज नहीं करनी है ठीक है, कल करनी है, शॉर्ट पिकनिक 2 घंटे की, 6 से 8, संडे करनी है ठीक है, संडे करेंगे। तो अभी आज हमारे बीच में शारदा बहन आए हैं, माँ शारदा, जय शारदे, एक गीत है बहुत अच्छा। तो शारदा बहन बाबा के यज्ञ के एक हम कहेंगे अमूल्य रतन है, जिनकी सुमधुर वाणी आवाज से इन्होंने कितनी आत्माओं को सुख दिया है, और बाबा के जो गीत है बहुत सुंदर सुंदर गीत गाए हैं और बहुत निरंकारी है। और अभी नीचे एक कॉन्फ्रेंस चालू हो गई कल से, जिसमें पुरुषोत्तम भाई भी नीचे व्यस्त है, तो वहाँ पर उनके बहुत सारे गीत है अगले 3-4 दिनों में। तो आज 2 घंटे के लिए ऊपर आए हैं, कल रात में ही आ गए थे, तो अभी तुरंत क्लास के बाद नीचे जाएंगे। तो बाबा के यज्ञ के बहुत सुंदर सुंदर गीत इन्होंने गाए हैं और गाते रहेंगे, और आवाज़ दिल को छूने वाली आवाज़ है। सभी सिंगर्स का धन्यवाद, कोई एक सिंगर का नहीं। हाँ, ये जो गीत जो बना था अमृत वेले का प्रभात, ये शारदा बहन के ही एक साथी है चैतन्य भाई, चैतन्य भाई उन्होंने ये गीत गाया है प्रभात, जो रोज हमने इतने दिनों से हम सुन रहे हैं। और जो दूसरा गीत था वो भुवनेश्वर के अमृत भाई है, उनकी टीम ने बनाया हुआ है योगी जागरण गीत, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कौन? हरीश मोहिल भाई जी, फिर विष्णुप्रिया बहन जी, युगरतन भाई, बहुत बहुत सारे सिंगर है, रीना बहन, राजेश भाई, रूहानी बहन गाएंगे, तो ये बहुत सारे लोग हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। सिंगर्स, संगीतज्ञ, टोली लाने वाले, टोली देने वाले, और कौन रह गया जो डेली क्लास और डेली का होमवर्क करने वाले, क्वेश्चन बनाने वाले, क्वेश्चन पेपर देने वाले, सुनने वाले, सुनने वाले का तो सबसे ज्यादा। तो अभी हम शारदा बहन से अभी अभी जो वैराग्य गीत सुना उसको हम सुनेंगे। हॉल की अरेंजमेंट और ये रोज आके ये सब तैयार करने वाले, यहाँ ये डालना, इधर ही डालना, ये इधर से इधर करना, सारा अरेंजमेंट करने वाले सब, सबको बहुत 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 दिल से धन्यवाद। तो मिटती दुनिया को भुला दे, अंतर का दीप जला दे, माटी की माया छोड़ के शिव से नाता जोड़ ले। संसार का ये खेल है भंवर, तृष्णा का हर घूट है जहर, समझ इसे एक भ्रम का मेला, हर राही है यहाँ अकेला। अब हर बंधन तोड़ दे, शिव से नाता जोड़ ले, देख क्षण भंगुर सब नाते, केवल दुखों की ओर ले जाते, जिनसे थी आस सुख की कभी, हर बार वही आंसू दे जाते। अब हर बंधन तोड़ दे, शिव से नाता जोड़ ले, अपनों ने ही खेले ऐसे दाव, दिल पे छोड़ गए गहरे घाव, अब छूट गया हर मिथ्या भाव, मन से मिटे सारे लगाव, अब हर बंधन तोड़ दे, शिव से नाता जोड़ ले, कांच के सपनों का यह जाल, माया पल पल करे बेहाल, ना इसमें प्यार या कोई सार, हर रिश्ता निकला बस व्यापार, अब हर बंधन तोड़ दे, शिव से नाता जोड़ ले। ओम शांति। शारदा बहन के पिताजी भी आ जाएंगे सामने, इनकी भी बहुत कमाल है निरंतर हंसमुख हंसते रहते हैं, और इनकी अपनी जॉब थी परंतु उस जॉब को छोड़ दिया है ताकि शारदा बहन जो सेवाएं कर रहे हैं उसमें और अच्छे से सहयोग दे सके।
छूट गया हर मिथ्या भाव, मन से मिटे सारे लगाव। अब हर बंधन तोड़ दे, शिव से नाता जोड़ ले। कांच के सपनों का यह जाल, माया पल पल कर बेहाल। ना इसमें प्यार या कोई सार, हर रिश्ता निकला बस व्यापार। अब हर बंधन तोड़ दे, शिव से नाता जोड़ ले।